ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के पास रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण अभियान शुरू किया। दिल्ली भाजपा ने आज दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली नगर निगम ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरणादायक फिल्में दिखाने की अनोखी पहल शुरू की। दिल्ली विकास प्राधिकरण अनाधिकृत कॉलोनी के निवासियों के लंबित पीएम उदय आवेदनों के निपटान में तेजी लाने के लिए सिंगल विंडो कैंप आयोजित कर रहा है और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने आज दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण अभियान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य उनकी गतिशीलता, पहुंच और सक्षमता को बढ़ाना है, जिससे उन्हें अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में आसानी हो। यह अभियान गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन पर आयोजित किया गया, जहां एनसीआरटीसी की निदेशक वित्त श्रीमती नमिता मेहरोत्रा और निदेशक सिस्टम एंड ऑपरेशन श्री नवनीत कौशिक ने लगभग 130 दिव्यांगजनों को स्मार्ट केन, श्रवण यंत्र और बैसाखी वितरित की। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि राजधानी में पिछले 2 वर्षों में 9वीं और 11वीं कक्षा में 3 लाख विद्यार्थी फेल हुए हैं और 29 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय बंद हो चुके हैं। इस विरोध प्रदर्शन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज राजधानी में ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने उन पर तरल पदार्थ फेंकने की कोशिश की। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यह हमला राजधानी की बदहाल और ध्वस्त कानून व्यवस्था को दर्शाता है।
अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। नांगलोई के अंदर जिससे फिरौती मांगी गई उनके पास गए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया। उससे कुछ दिनों पहले छतरपुर में उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई। दिल्ली के अंदर फिरौतियों की कॉल्स आ रही हैं, व्यापारियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, शोरूम्स के अंदर गोलियां चल रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान पर आरोप लगाया कि वे कथित तौर पर अपराधियों के साथ मिलकर वसूली करते हैं। आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 3 ऑडियो क्लिप जारी किए, जो कथित तौर पर दावा करती है कि आम आदमी पार्टी के विधायक इस वसूली में संलिप्त हैं। मीडिया के साथ बातचीत में श्री सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायक जनता को लूटने का काम कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, ये एक ऐसा खेल खेल रहे हैं दिल्ली में जो दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर विषय है, जिसको लोकतंत्र में जनता जिता के भेजती, अगर वही उनको हलाल करने में लग जाए तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली का क्या होने वाला है। तो इस वार्ता के माध्यम से तो हम निवेदन करेंगे जांच एजेंसी से भी कि जो साक्ष्य आज यहाँ दिए जा रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे आपराधिक छवि वाले विधायकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो।
इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने कहा है कि पुलिस और अदालत ने इस ऑडियो क्लिप को कई वर्ष पहले फर्जी और गलत बताया था।
देखिए, सब बकवास कर रहे हैं। बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं आम आदमी पार्टी को बदनाम करे, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये ऑलरेडी ये पुरानी चीज है और इसके ऊपर कोर्ट ने स्टे कर रखा है। इसमें सब पुलिस ने पहले जांच कर चुकी, सब चीजें सारी फेक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुद्दों की बात पे चुनाव लड़े, चुनाव आ रहे दिल्ली के अंदर।
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आज राजधानी में कालकाजी विधानसभा का दौरा किया। दौरे के बाद मीडिया के साथ बातचीत में राज्यसभा सांसद ने मुख्यमंत्री आतिशी की आलोचना करते हुए कहा कि क्षेत्र की हालत बहुत बदहाल हो चुकी है।
आज दिल्ली के हाल बहुत ही ज्यादा बदहाल हो चुके हैं। आप किसी अमीर कॉलोनी में चले जाइए या किसी गरीब स्लम एरिया में, हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठा हो गए हैं और जल भराव हो रखा है। हालात इतने बुरे हैं कि सारी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। वहां पे इतना बुरा हाल है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बुलेंस तो अंदर आना बहुत दूर की बात है, गाड़ियां तक अंदर नहीं आ रही।
सुश्री मालीवाल ने कहा कि जब मुख्यमंत्री आतिशी अपनी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति नहीं सुधार सकती तो बाकी दिल्ली को कैसे ठीक करेंगी। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी नेता विजय गोयल ने विशेष अभियान चलाया। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास से उन्होंने लोक अभियान के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर नागरिकों की राय ली। मीडिया के साथ बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि लोग ज्यादातर प्रदूषण, पानी, सीवर की गंदगी और कूड़े के पहाड़ को लेकर चिंतित हैं और ये उनके बड़े मुद्दे हैं।
लोग बता रहे हैं कि प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, जल सीवर की समस्या है या फिर बांग्लादेश और रोहिंग्या की समस्या है या कूड़े के पहाड़ हैं या अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही, तो लोग अपनी अलग अलग समस्याओं पे लोग अपने विचार रख रहे हैं जी। अभी तक का जो सर्वे हुआ है उसके अंदर जल और सीवर सबसे बड़ी समस्या है, वहीं पार्किंग की भी समस्या अभी एक स्कूटर ड्राइवर ने बताई है, पर प्रदूषित यमुना और कूड़ा ये एक बहुत बड़ी दिल्ली की समस्याएं हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में उन्हें प्रेरणादायक फिल्में दिखाने की अनोखी पहल की शुरुआत की है। ये फिल्में विद्यार्थियों को उनके अपने जीवन में सकारात्मक लक्ष्य के लिए प्रेरणा देंगी और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। निगम ने विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रेरक कार्टून फिल्में दिखाएं, वहीं कक्षा 4 और 5 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को चंदू चैंपियन, आई एम कलाम और 12वीं फेल जैसी प्रेरणादायक फिल्में दिखाई जाएं। दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में सभी निगम विद्यालयों के प्रभारियों को अपने विद्यालय में लगे स्मार्ट टीवी या अन्य श्रव्य दृश्य साधनों का इस्तेमाल करके विद्यार्थियों को प्रेरक फिल्में दिखाए जाने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA अनाधिकृत कॉलोनी के निवासियों के लंबित PM उदय आवेदनों में तेजी लाने और उसके निष्पादन के लिए आज से विशेष सिंगल विंडो कैंप आयोजित कर रहा है। ये कैंप अगले महीने की 29 तारीख तक प्रत्येक शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। ये कैंप राजधानी के कई इलाकों में आयोजित किया जा रहा है। आवेदक अपने पास के कैंप में जाकर लंबित PM उदय आवेदन के निपटारे से संबंधित कार्य करवा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य में विश्व बैंक की सहायता से जल्द ही एक विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का कौशल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। श्री सैनी ने कहा कि केंद्र की स्थापना से राज्य की तकनीकी क्षमता को प्रोत्साहन मिलेगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के केंद्र के रूप में एक विशेष पहचान बनेगी। सीमा सुरक्षा बल ने इस वर्ष अभी तक पाकिस्तान की ओर से पंजाब में मादक द्रव्य, हथियार और गोला बारूद की तस्करी के लिए उपयोग किए गए 245 ड्रोन जब्त किए हैं। इसके अलावा बल के साथ मुठभेड़ में पंजाब की सीमा पर 3 पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए हैं। बल ने सीमा पर 2 तस्करों समेत 31 पाकिस्तानी नागरिकों को भी पकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सर्पदंश के मामलों और उससे होने वाली मृत्यु को राज्य लोक स्वास्थ्य अधिनियम और अन्य प्रावधानों के तहत अधिसूचित रोग की श्रेणी में रखने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस बात पर जोर दिया है कि सर्पदंश गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मृतकों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। सुश्री श्रीवास्तव ने ये कहा है कि सर्पदंश की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सर्पदंश की घटनाओं की निगरानी के लिए ये जरूरी है कि इस तरह की सभी घटनाओं को दर्ज किया जाए। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कहा है कि कपड़ा उद्योग में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की समर्थ योजना कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना से 3,60,000 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। ये पहल कपड़ा उद्योग में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। श्री मार्गरेटा ने बताया कि इस योजना में 88% लाभार्थी महिलाएं हैं। कपड़ा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ईपीएफओ योगदान के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध बैंकों की पात्रता को आसान बनाने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की। नई पात्रता में भारतीय रिजर्व बैंक में सूचीबद्ध सभी बैंक योगदान संग्रहण के लिए सूचीबद्ध होंगे। बैठक के दौरान बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। इससे कारोबारी अनुकूलता और सेवा सुगमता में वृद्धि होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत अब सपना नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और राष्ट्र अपने संकल्प से इसे हासिल करेगा। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में ये बयान दिया, जिस सम्मेलन का शीर्षक है विकसित भारत 2047 नए भारत 3.0 की परिकल्पना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे, डिजिटल बुनियादी ढांचे और डिजिटल पहुंच को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच द्वारा सराहा जा रहा है।
लोग समझते हैं कि हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक ताकत है। गलत। आर्थिक ताकत आपको अधिकार नहीं देती कि संसाधनों को चाहे जैसे उपयोग करें। और दूसरी बात, स्वदेशी पर ध्यान दीजिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर ड्रेन्ड आउट, मुद्रा भंडार के अंदर स्थिति होती है, लोगों के हाथ से काम छीना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप ब्लॉसम नहीं होता है। यह आम आदमी का कर्तव्य है कि मैं उपयोग करूंगा तो स्वदेशी। प्रधानमंत्री जी ने अपना मंतव्य दे दिया है, बी वोकल फॉर लोकल।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। आज शाम 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 337 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कई इलाकों में ये स्तर 400 के पार चला गया है। दिल्ली के बुराड़ी में 428, जहांगीरपुरी में 384, बवाना में 364, पंजाबी बाग में 356, आनंद विहार में 350, अशोक विहार में 350 और ITO में 341 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
खराब वायु गुणवत्ता से दिल्ली वासियों को सांस संबंधी समस्याएं, आंखों में जलन और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों द्वारा बच्चों, बुजुर्गों और पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे पीड़ित लोगों को घर से ना निकलने को कहा गया है। सरकार भी लोगों को बाहरी गतिविधियों को सीमित करने और मास्क पहनने जैसे सुरक्षात्मक उपाय करने की सलाह दे रही है। दिल्ली नगर निगम ने ग्रैप 4 दिशा निर्देशों के अनुसार खुले में कूड़ा जलाने, अवैध निर्माण और अपशिष्ट डंपिंग को रोकने और सड़कों पर धूल नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के पास रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण अभियान शुरू किया। दिल्ली भाजपा ने आज दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली नगर निगम ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरणादायक फिल्में दिखाने की अनोखी पहल शुरू की। दिल्ली विकास प्राधिकरण अनाधिकृत कॉलोनी के निवासियों के लंबित पीएम उदय आवेदनों के निपटान में तेजी लाने के लिए सिंगल विंडो कैंप आयोजित कर रहा है और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।